ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बिहटा हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव का शिलान्यास भी किया। इस परियोजना पर 1410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। पटना हवाई अड्डे पर करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल भवन से हवाई अड्डे की क्षमता मौजूदा 3 गुना बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री इस समय पटना में रोड शो कर रहे हैं। श्री मोदी कल रोहतास जिले के बिक्रमगंज में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में शहर आधारित गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि 1017 करोड़ रुपए की यह परियोजना अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों के लोगों के लिए लाभकारी होगी। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण भूमिका है।
आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहाँ लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत पर भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है और कोई भी बातचीत द्विपक्षीय होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते।
जहां तक आतंकवाद का सवाल है उस पर बात इस मुद्दे पे होगी एक पाकिस्तान से कि जो हम लोगों ने आतंकियों का सूची जो दिया था उनको कुछ साल पहले उनको हमारे हवाले करें। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है उस पर द्विपक्षीय रूप से ही बात होगी। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कब वो खाली करेगा अपना अवैध तरीके से उस पर जो कब्जा है उसको।
सिंधु जल संधि पर प्रवक्ता ने कहा कि ये तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से बंद नहीं कर देता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया राष्ट्रीय सुरक्षा का अनिवार्य घटक है और इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रभावी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि आज भारत न केवल लड़ाकू विमान या मिसाइल प्रणालियों का निर्माण कर रहा है बल्कि हम नए युग की युद्ध तकनीक के लिए भी तैयार हो रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगले कुछ वर्षों में विश्व के भारत के प्रति दृष्टिकोण और भूमिका में काफी बदलाव आने वाला है। आज नई दिल्ली में CII शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में दूरसंचार, रक्षा और चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्रों में कई गुना वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का विषय है कितना बदल गया है साहित्य। सम्मेलन में देवी अहिल्याबाई होलकर की गाथा भी प्रस्तुत की जाएगी। केंद्र सरकार 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के मार्गों और आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 581 कंपनियां तैनात करेगा। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को क्षेत्र में पहले से तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 156 कंपनियों की तैनाती के लिए अधिकृत किया है। रिजर्व बैंक ने भारत के वर्तमान वित्त वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट में अच्छे मॉनसून, वस्तुओं की कम कीमतों और बेहतर आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता से मुद्रास्फीति में कमी आने की संभावना है। बम्बई शेयर बाजार का संवितीय सूचकांक आज 321 अंक बढ़कर 81,633 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 81 अंक ऊपर 24,834 पर आ गया। IPL क्रिकेट में प्लेऑफ के पहले क्वालिफायर में आज शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। कल मुंबई इंडियंस का मैच गुजरात टाइटंस से होगा। प्रतियोगिता का फाइनल 3 जून को अहमदाबाद में होगा। उधर नॉर्वे शतरंज में वर्तमान विश्व चैंपियन गुकेश डोमराजू तीसरी बाजी में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा को पराजित कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।